लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन प्रेरितिक निवास की पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम प्रार्थना पर अपनी धर्म शिक्षा माला को जारी रखते हुए स्तुति के आयाम पर आज चिंतन करेंगे। हम इसकी शुरुआत यीशु ख्रिस्त के जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण से करेंगे। अपने प्रथम चमत्कार के बाद यीशु अपने चेलों के संग ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं, जहां मुक्तिदाता का प्रेरितिक कार्य एक विकट दौर से होकर गुजरता है। यह संदेश योहन बपतिस्ता की ओर से आता है, जो बंदी गृह में है। क्या आप वही हैं जो आने वाले थे, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? क्योंकि वह अपने में इस बात का संदेह करता है, कहीं उसने इस घोषणा में कोई गलती तो नहीं की है। जीवन में हमेशा अंधेरे क्षण होते हैं, आध्यात्मिक रात के क्षण, और योहन इसी क्षण से गुजर रहा होता है। यीशु ने झील के किनारे जिन गांवों में चमत्कार किए थे, वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस निराशा की स्थिति में मत्ती एक आश्चर्यजनक सत्य को व्यक्त करते हैं, जो ईश्वर पिता की स्तुति के गीत हैं। पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। विवाद की स्थिति में जहाँ बहुत से लोग और स्वयं योहन बपतिस्ता अंधकार के क्षण में होते, यीशु अपने पिता की स्तुति करते हैं। क्यों?
Anzitutto lo loda per quello che è, Padre Signore del cielo e della terra.
सर्वप्रथम पिता जो हैं, उसके लिए यीशु उनकी स्तुति करते हैं। पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, यीशु अपने में इस बात की खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि वे जानते और अनुभव करते हैं कि उनके पिता विश्व मंडल के ईश्वर हैं, साथ ही उन सारी चीजों के पिता जो दुनिया में व्याप्त हैं, वे उनके पिता हैं। उनकी स्तुति इस अनुभूति से उत्पन्न होती है कि वे स्वर्गीय सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र हैं। संत पापा ने कहा,
E poi Gesù loda il Padre perché predilige i piccoli. È quello che lui stesso sperimenta predicando nei villaggi.
इसके बाद वे अपने पिता की स्तुति करते हैं, क्योंकि उन्होंने निम्न लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि की है। इस बात का अनुभव उन्होंने स्वयं अपने प्रेरितिक कार्यों के दौरान कस्बों में किया। ज्ञानी और समझदारों ने उन पर संदेह किया, वे हिसाब किताब करते हुए अपने में बंद रहे, जबकि छोटे लोगों ने अपने को खुला रखते हुए उनके संदेश को ग्रहण किया। यह पिता की योजना रही, और इस ईश्वरीय योजना पर यीशु अपनी खुशी प्रकट करते हैं। हम भी अपने में आनंदित होते हुए ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि नम्र और दीन व्यक्तियों की भांति हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। संत पापा ने उन नम्र और दीन लोगों के प्रति अपनी खुशी प्रकट की, जो अपने जीवन में बहुत सारी कमियों के बावजूद तीर्थ करते, जो प्रार्थना करने जाते, भजन गाते और ईश्वर की स्तुति करते हैं। नम्रता उन्हें ईश्वर की स्तुति करने हेतु प्रेरित करती है। उन्होंने कहा, विश्व के भविष्य में और कलिस्य की आशा में हम सदैव निम्न लोगों को पाते हैं, जो अपने को दूसरों से बेहतर नहीं समझते, जो अपने जीवन की त्रुटियों और पापों से अवगत हैं, जो अपने जीवन को दूसरों पर थोपना नहीं चाहते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि ईश्वर पिता में हम सभी एक दूसरे के लिए भाई बहने हैं। अतः असफलता की इस परिस्थिति अंधेरी स्थिति में यीशु प्रार्थना करते हुए अपने पिता की स्तुति करते हैं। उनकी प्रार्थना हमें भी अपने में समाहित करती है, क्योंकि हम भी अपने जीवन की मुसीबतों में, जिन्हें हम रोक पाने में असमर्थ होते, ईश्वर की उपस्थिति को स्पष्ट रूप में देखने और अनुभव करने में असफल पाते हैं।
Quei momenti Gesù, che pure ha tanto raccomandato la preghiera di domanda, proprio in quel momento in cui avrebbe avuto motivo di chiedere spiegazione al Padre, invece si mette a lodarlo.
हमारे जीवन की ऐसी परिस्थिति में यीशु हमें सवाल जवाब करने को निर्देशित करते हैं। वे स्वयं अपने पिता से तर्क वितर्क कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बदले उनकी प्रशंसा और स्तुति की। यह एक विरोधाभास की तरह लगता है, लेकिन यह सच है। संत पापा ने कहा कि किसकी महिमा करना जरूरी है, अपनी या ईश्वर की। उन्होंने यूखरिस्तीय धर्म विधि के प्रार्थना को उद्धृत करते हुए कहा, यद्यपि तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, परंतु हमारी कृतज्ञता हमारे लिए तेरा ही उपहार है, क्योंकि हमारी प्रशंसा तेरी महानता की वृद्धि नहीं करती, वरन हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। ईश्वरीय महिमा गान करते हुए हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। संत पापा ने कहा, प्रशंसा की प्रार्थना हमारे लिए सहायक है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इसे परिभाषित करते हुए कहती है, यह शुद्ध हृदय की खुशी को विश्वास में ईश्वर के संग साझा करना है, जो उनकी महिमा के पूर्व प्रेम में अभिव्यक्त होता है। हम इसे अपने जीवन के खुशी भरे क्षणों में केवल व्यक्त न करें, बल्कि अपने जीवन की कठिनाइयों में भी, जब हमारे जीवन के मार्ग तीक्ष्ण हो जाते हैं। हम अपने जीवन की चिंतामय मार्ग मांग भरी राहों में जीवन की नई क्षितिज को पाते हैं। प्रशंसा करना स्वच्छ सांस लेने के समान है, जो हमारे हृदय को परिशुद्ध करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने कठिन परिस्थिति अंधकार में बने नहीं रहते हैं। असीसी के संत फ्रांसिस अपने जीवन के अंत में अपनी प्रार्थना सूर्य भाई के भजन में हमें एक बड़ी शिक्षा देते हैं।
Il poverello non lo compose in un momento di gioia, momento di benessere, ma al contrario, in mezzo agli stenti.
उन्होंने इसकी रचना खुशी और अपने अच्छे क्षणों में नहीं, अपितु जीवन की कठिन परिस्थिति में की। वे अपने जीवन के उस घड़ी में एक तरह से अंधे हो गए थे। उन्होंने अपने हृदय में अकेलेपन का अनुभव किया, जिसे उन्होंने कभी नहीं किया था। उनके उपदेशों के कारण दुनिया में परिवर्तन नहीं हुआ था। बहुत से लोग थे जो लड़ाई झगड़े के कारण अपने में टूटे थे। उससे भी बढ़कर वे स्वयं मृत्यु शैया में पड़े हुए थे। यह परिस्थिति भ्रम और खुद की विफलता को धारण का क्षण हो सकता था, लेकिन संत फ्रांसिस अपने दुख की घड़ी अंधेरे क्षणों में इस तरह की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, सारी चीजों में तेरी स्तुति हो। उन्होंने सभी चीजों के लिए, सारे सृष्टि के लिए ईश्वर की प्रशंसा की, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के लिए भी, जिसे उन्होंने साहस में अपनी बहन कहा। संत फ्रांसिस हमें दिखलाते हैं कि हम हमेशा स्तुति कर सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही समय में, क्योंकि ईश्वर विश्वासी मित्र हैं। स्तुति की गहराई यही है, ईश्वर निष्ठावान मित्र हैं और उनका प्रेम कभी कम नहीं होता है। वे सदा हमारी बगल में हैं, वे हमेशा हमारी प्रतीक्षा करते हैं। किसी ने कहा है, वे एक पहरेदार हैं जो आपके करीब हैं और आपको सुरक्षित आगे जाने देते हैं। मुश्किल एवं अंधकार पूर्ण समय में हम यह कहने का साहस करें, धन्य है तू हे प्रभु। ईश्वर की स्तुति करना हमारे लिए अति उत्तम है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Domino Hobiscum. Sit nomen Domini Benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कोविड-19 महामारी के प्रसार की वजह से लोगों के दैनिक जीवन की कार्यशैली में भारी परिवर्तन आया है। धार्मिक स्थलों और पल्लियों के कार्य करने के तरीकों में भी परिवर्तन आया है। वाटिकन में दिव्य भक्ति और संस्कार संबंधी परम धर्म पीठीय धर्म संघ ने चालीसा की शुरुआत में राखबुध के दिन राख वितरण की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया है। इस वर्ष चालीसा की शुरुआत 17 फरवरी राख बुधवार के लिए परम धर्म पीठीय धर्म संघ ने राख वितरण के संबंध में एक अनुदेश प्रकाशित किया है, जिसे सभी कैथोलिक पुरोहितों को ध्यान में रखते हुए राख वितरण करना होगा। राख आशीष देने और पवित्र जल छिड़कने के बाद पुरोहित वहां उपस्थित सभी विश्वासियों को संबोधित करते हुए रोमन मिसल में पाए गए सूत्र का पाठ करेंगे, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, या याद रखो कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। इसके बाद पुरोहित अपने हाथों को धोता है, अपने चेहरे में मास्क लगाता है और राख वितरण के लिए सबके सामने खड़ा हो जाता है। विश्वासी उसके पास आते हैं या जैसा उचित हो पुरोहित लोगों के पास जाता है जो अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। फिर पुरोहित प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर बिना कुछ कहे राख छिड़कता है। उधर जर्मनी के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने चिकित्सीय सहायता से आत्महत्या के लिए कलीसिया के विरोध को दोहराया और कहा कि हर मरने वाले व्यक्ति को ख्रिस्तीय आशा के संदेश को समर्थन देने की आवश्यकता है। ख्रिस्तीय दृष्टिकोण से सहायता प्राप्त आत्महत्या नैतिक रूप से स्वीकार्य विकल्प नहीं है। जर्मन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के प्रवक्ता मथायस कोप ने सोमवार को फाइज द्वारा प्रकाशित एक लेख के जवाब में यह बात कही। अलाउिंग मेडिकली असिस्टेंट सुसाइड अर्थात चिकित्सा सहायता प्राप्त आत्महत्या नामक लेख में प्रोफेसर डॉक्टर रेनर अनसेलम और उल्रिक लिल्ली का तर्क है कि कलीसियाई संस्थानों को सर्वोत्तम संभव उपशामक देखभाल की गारंटी देनी चाहिए, लेकिन सहायता की गई आत्महत्या से इनकार नहीं करना चाहिए और जो लोग मरना चाहते हैं उनके अपने निर्णय का सम्मान करते हुए उन्हें सुझाव समर्थन और अंत तक उनका साथ देना चाहिए। ख्रिस्तीय दृष्टिकोण से लोगों की स्वतंत्रता को उनके व्यक्तिगत विचारों के अनुसार उनके जीवन के हर चरण में स्वयं तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह मृत्यु पर भी लागू होता है। शासन के कानून का सम्मान करते हुए कोप ने डीबी के वेबसाइट पर प्रकाशित बयान में बताया। धर्माध्यक्ष सम्मेलन के प्रवक्ता ने कहा, हालांकि यह आत्महत्या को एक नैतिक रूप से स्वीकार्य विकल्प नहीं बनाता है, वे इस बात पर भी गौर करते हैं कि अनुसंधान से पता चलता है कि किसी के जीवन को समाप्त करने की इच्छा ज्यादातर मामलों में चरम स्थितियों में उत्पन्न डर और निराशा का परिणाम है, इसलिए इसे आत्म निर्णय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जा सकता है। प्रवक्ता ने कलीसिया की स्थिति को दोहराया है कि समस्या के समाधान के लिए आत्महत्या की अनुमति देना सही उत्तर नहीं है। इन स्थितियों में जिस चीज की जरूरत होती है वह मरने के लिए मदद नहीं है, बल्कि जीवन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए समर्थन है। उन्होंने यह भी कहा, सभी बीमार लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए अपनी सहमति दें ताकि दूसरों पर बोझ न बने। ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मघाती विचारों वाले लोगों के लिए प्रेरितिक देखभाल का उल्लेख करते हुए कोप ने आगे जोर दिया कि यह तटस्थ नहीं हो सकता। वे कहते हैं, प्रेरितिक देखभाल करने वाला व्यक्ति खुले दिमाग से प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करता है, साथ ही ख्रिस्तीय आशा का संदेश देता है और वह हमेशा जीवन के पक्ष में होता है। उधर अमेरिकी धर्माध्यक्षों ने सरकार को इस महीने के संघीय मृत्यु दंड को रोकने के लिए कहा। उन्होंने निर्वाचित नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को संघीय मृत्यु दंड को रोक लगाने की घोषणा करने और वर्तमान संघीय मृत्यु दंड को आजीवन कारावास की शर्तों के रूप में घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय से लेकर संत पापा फ्रांसिस तक सभी परमाध्यक्षों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में मृत्यु दंड को समाप्त करने हेतु लगातार मांग की है। मंगलवार 12 जनवरी मंगलवार को इंडियाना राज्य में घातक इंजेक्शन द्वारा लीसा मोंटेगोमरी को मौत की सजा दी गई। मोंटेगोमरी को 23 वर्षीय गर्भवती महिला बॉबी जो स्टीननेट की अपने ही घर में बच्चे को अपहरण करने के पहले उसकी हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। एक अन्य कैदी कोरी जॉनसन, जो घातक इंजेक्शन से मरने वाली हैं, उसे 14 जनवरी को मृत्यु दंड देने हेतु निर्धारित किया गया है। उधर भारत ने मंगलवार को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के रूप में वर्णित किए जाने की तैयारी में देश भर में कोविड-19 टीकों के खेपों को वितरित करना शुरू किया। भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किए गए टीकों की पहली खेप मंगलवार को पुणे से रवाना हो गई। संस्थान से तापमान नियंत्रित ट्रकों पर लादे गए टीकों को शहर के हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया, जहां से निजी हवाई जहाजों ने देश भर में विभिन्न गंतव्यों तक खेप पहुंचाई। एक ट्वीट में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो की उड़ानें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ को रोज पहुंचाने वाली है। पहले 30 मिलियन डॉक्टर्स, नर्स और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को टीका दिया जाएगा। इस दौरान करीब 27 करोड़ ऐसे लोगों का डाटा जुटाया जाता रहेगा जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या कम, मगर वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 50 साल से नीचे की उम्र के वे लोग भी टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे जिनमें कोरोना के सिम्टम्स रहे हों। प्राथमिकता सूची में शामिल लोगों का टीकाकरण जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।